देवला पुस्तक 11वीं लेक्चर नंबर 16। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्चायाणं, नमो लोहे सौवसाहूणं। वेदगवेदगवेदगम् अवेदगं वेदगं तसं सिद्धं सिद्धं प्रणमीय शिरसा वोच्चं वेदगमाहि आरमं। यह श्री विरसेन आचार्य रचित जेधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा युतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 11वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 126 पर आ गए। यहाँ भी हम अल्प बहुत्व देख रहे हैं। वहां हमने देखा का मिथ्यात्व का मिथ्यात्व की
126 पर है।
126 पर अभी तीसरी लाइन चौथी लाइन से शुरू करेंगे।
जुगुप्सा का होगा।
हाँ, तो हमने यहाँ शुरू किया था 123 से। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा सबसे तीव्र अनुभाग वाली होती है, वो देखा था। उसके बाद अनंतानुबंधियों की अन्य तरणीय क्रोधमान मायलोभ की परस्पर समान है और वो उनकी उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणीहीन है। मिथ्यात्व के उत्कृष्ट से अनंत गुणाहीन है। उसके बाद संज्वलनों की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीन देखी थी। उसके बाद उससे प्रत्याख्यानावरण कर्मों के अन्यतर उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीन देखी थी। उससे अप्रत्याख्यानावरणीय कर्मों की अन्यतर वो उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीन देखी थी। उसके बाद नपुसक वेद की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीन 125 पर देखा। उसके बाद अरति की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीन। उसके बाद शोक की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीन। उसके बाद भय की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीन। ये नपुसक वेद, अरति, शोक, भय। उसके पश्चात जुगुप्सा की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीन। यानी पहले पहला नंबर मिथ्यात्व का, फिर अनंतानुबंधी, फिर संज्वलन, फिर प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, उसके बाद नपुसक वेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। अब आगे बढ़ेंगे। इति वेदस्य उक्तस्य अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीना। उससे स्त्रीवेद की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीन है, क्योंकि पूर्व के अनुभाग को देखते हुए इसमें प्रशस्त भाव पाया जाता है। है तो सभी अशुभ ही, अप्रशस्त ही है, फिर भी उसमें थोड़ी तरतमता है, इसलिए वो अति अप्रशस्त जो नपुसक वेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, वो पहले लिए। अब उसके बाद स्त्रीवेद का नंबर आया। पुरुष वेदस्य उक्तस्य अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीना। उससे पुरुष वेद की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीन है, क्योंकि स्त्री वेद कंडे के अग्नि के समान है। उस दिन अपनी चर्चा हुई थी ना, नपुसक वेद के लिए ईट की, वो उसके लिए क्या शब्द आया था, परसों आया था कि उसके पहले आया था, कैसा पाक ऐसा कुछ कहा था,
यानी
संस्कृत का कुछ शब्द था, इष्टपाक, इष्टपाक ये बताते हैं। अच्छा अच्छा, रति के, हाँ मैं नपुसक वेद में देख रही थी। नपुसक वेद का अनुभव इष्टपाक की अग्नि के समान है। ये यहाँ हुआ कंडे की अग्नि के समान, परंतु पुरुष वेद पलाल की अग्नि के समान है। पलाल की नहीं, सूखी लकड़ी होती वो तो, या पत्ते जो है, हाँ सुरुण जिसको कहेंगे, हाँ सूखा घास, वो जल्दी जलती है, बुझ भी जाती है वैसे, इसलिए यह उससे अनंत गुणा ही नहीं, इसका अनुभाग इतना अधिक नहीं है, ये बात बताना चाहते हैं। रदी ये उक्कस अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीना, उससे रति की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीन है, क्योंकि पुरुष वेद के उदय के समान रति कर्म के उदय में संताप को उत्पन्न करने की शक्ति का अभाव है। हास्य उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीना, उससे हास्य की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीन है, क्योंकि यह रति पूर्वक होती है। संताप ने क्लेश कहो या वो दुख है जो,
हाँ
यानी वो सहा नहीं जाता है,
आकुलता नहीं होती,
हाँ तीव्र आकुलता वाला, उससे मैंने ऊपर पढ़ेंगे पहले, सम्मा मिच्छत्तस्य उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीना, उससे सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण हो गए ना, रति पूर्वक होता है, ये भी पढ़ा था, सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीन है, क्योंकि यह द्विस्थानीय स्वरूप है, उत्कृष्ट की बात है ना, ख्याल में है, क्योंकि सर्वघाती का जो सबसे नीचे के जो अनुभाग वाले पर्वत है उस रूप है, ये समय मित्र यानी वो दारू भाग रूप अनुभाग होते हैं, उसको द्वित स्थान मिलते सम्मत्ते उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीना, उससे सम्यक्त्व की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीन है, क्योंकि यह देशघाती द्वित स्थानीय स्वरूप है। वो सर्वघाती द्विस्थानी रूप और ये देशघाती द्विस्थानी रूप, हमने देखा दारू वाले जो स्पर्धक है उसके सबसे अनंत भाग नीचे का वो देशघाती है, देशघाती और ऊपर के अनंत भूभाग सर्वघाती है, वो सर्वघाती में से जो लोएस्ट है वो समय मिथ्या होता और वो देशघाती है वो समय प्रकृति, यानी वो सर्वघाती द्विस्थानीय है और ये देशघाती द्वीप स्थान है। सर्वघाती प्रकृति है वो, सम्यक मिथ्या तो प्रकृति सर्वघाती है और सम्यक प्रकृति
देशघाती
है, और उसके उत्कृष्ट अनुभव की बात कर रहे हैं। इस प्रकार ओघ से उत्कृष्ट अल्पबोध से समाप्त हुआ। अब आदेश से सब गति मार्गणाओं में अपनी अपनी उदीर्यमान यानी वहाँ उदीर्णा योग्य प्रकृतियों का अल्प बहुत इसी प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि ओघ प्ररूपणा से इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। सर्वत्र मिथ्यात्व का ये हमने अल्प बहुत देखा था, सबसे उत्कृष्ट है, उसके बाद अनंत गुणाहीन, अनंत गुणाहीन लगाया था, फिर अनंत अनुबंधी को, उसके बाद संज्वलन को, प्रत्याख्यान को, प्रत्याख्यान को, नपुसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, त्रिवेद, पुरुष वेद, फिर रति,
रति और हास्य,
फिर हास्य है ना, सम्यक
मिथ्यात्व,
सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक सत्य। ये हो गया, अभी जघन्य की बात करेंगे। जघन्य अनुभाग उदीर्णा, जघन्य अनुभाग उदीर्णा का प्रकरण है। आगे अल्प बहुत्व से विशेषित जघन्य अनुभाग उदीर्णा का कथन करना चाहिए। यानी जघन्य अनुभाग से उदीर्णा किस अपेक्षा से कथन चलेगा? अल्प बहुत्व की अपेक्षा। वहाँ उत्कृष्ट तो शुरुआत किया था, उससे अनंत गुण ही नहीं नहीं बताया था। अब यह जघन्य से शुरुआत इस प्रकार प्रकृति की संभाल करने वाला यह सूत्र है, इसलिए जघन्य का प्रकरण है। ओह और आदेश के भेद से निर्देश दो प्रकार का है, उनमें से ओह का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मिला कि नहीं मिला? 127 पृष्ठ है, नीचे से दूसरा सूत्र। सौव मंदानुभागा यानी मंद अनुभागा लोभ संजलनस्त जहन्न अनुभाग उदीर्णा। लोभ संज्वलन की जघन्य अनुभाग उदीर्णा सबसे स्तोक है, सबसे कम से कम अनुभाग वाली उदीर्णा लोभ में होती है, क्योंकि अंतर्मूर्त काल तक प्रति समय अपवर्तना के द्वारा। ये प्रति समय अपवर्तन क्या होता है?
अनुसमय अपवर्तन, प्रति समय अनुभाग,
प्रति समय अनंत गुणा ही होते चला जाना। जब अंतर्मूर्त बाकी रहता है, पहले तो क्या होता था, कांडक घात होता था, यानी कांडक के एक कांडक का जितना अंतर्मूर्त है उसके पश्चात एकदम उसमें ड्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ प्रति समय अनंत गुणा ही चलेगा अनुभव, उसको कहते अनुसमयापवर्तन। उन्होंने प्रति समय अपवर्तन और अनुसमय अपवर्तन। और ये सबसे अंत में जाने वाली जो है, या अन्य कोई उदीर्णा भी नहीं बाकी है, ये शुद्धि सबसे अधिक है यहाँ पर, तो ये सबसे जघन्य अनुभाग की उदीर्णा होगी। हाँ देखो फिर पढ़ती हो, क्योंकि अंतर्मूर्त काल तक प्रति समय अपवर्तना के द्वारा अच्छी तरह जघन्य भाव को प्राप्त हुई सूक्ष्म पृष्टि का जघन्यपना पाया जाता है। पहले तो स्पर्धक थे, फिर अपूर्व स्पर्धक बने, उसके बाद पृष्टि हुई, बादर पृष्टि, फिर सूक्ष्म पृष्टि हो गई। माया संजलन से जघन्य अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणा। अब जघन्य की ओर से बढ़ेंगे तो अनंत गुणा वाली बात करेंगे, उससे माया संज्वलन की जघन्य अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणी है, क्योंकि जो जीव शपक श्रेणी में श्रव दिखता है, शपक श्रेणी में माया कषाय का वेदन कर रहा है, वेदन कर रहे ना, उसका उदय चल रहा है, तभी तो उदीर्णा कहलाएगी। उसके अंतिम समय में सयय में हुआ बादर पृष्टि रूप से जघन्यपना पाया जाता है। ऊपर क्या लिखा था? सूक्ष्म पृष्टि। सूक्ष्म पृष्टि मात्र लोभ में ही होती है, और बाकी जो है वो बादर पृष्टि है, यानी चारों कषायों में पहले संग्रह पृष्टि होती है, उसमें से उसका उदय तो बादर पृष्टि रूप से ही वहाँ होगा, और लोभ का मात्र अंत में बादर पृष्टि रूप से उदय रहेगा, नौवे गुणस्थान के अंत में, तभी वो पृष्टि करने का कार्य करेगी चलेगा, और पृष्टि का उदय होगा दसवें, उसका भी प्रति समय अंतर्मूर्त तक अनंत गुणा अनुभाग कम होते होते शुरुआत नहीं, पृष्टि करने का कार्य नहीं, सत्ता में पड़े पड़े वो पृष्टि सूक्ष्म रूप से होती है, पहले बादल पृष्टि थी, फिर उसको सूक्ष्म पृष्टि रूप परिणाम आया, परंतु उदय कब होगा? दसवें में जाने के बाद। नौवे में है तो बादर पृष्टि का उदय चल रहा है, और सत्ता में पड़े हुए निषेक सूक्ष्म पृष्टि रूप से परिवर्तित हो रहे हैं।
लोक का अवली प्लस एक समय वाला है ना, और इसका अंतिम समय
अवली प्लस एक समय जब था, उदीर्णा में तो बाद में रुक जाएगी, उदय तो भले चलेगा उसका, तो अंतिम समय में बादर पृष्टि रूप से जघन्यपना पाया जाता है। ये माया की बात है। मान संजलनस्त जहन्न अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणा, उससे मान संज्वलन की जघन्य अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणी है, क्योंकि पिछले स्वामित्व के विषय से, यानी जो माया वाली जो बात है वहां से, उससे अंतर्मुख से पीछे जाकर यानी पूर्व में पीछे ने उसके पहले जो मान का वेदन करने वाला जीव, मान का जिसके उदय है वेदक यानी उसका उदय वाला जीव, मान वेदन काल के अंतिम समय में स्थित है। उसके पूर्व के कृष्टिगत अनुभाग से अनंत गुणे मान संज्वलन के तृतीय संग्रह कृष्टिगत अनुभाग को ग्रहण कर जघन्य स्वामित्व का विधान किया गया है। हर एक कषाय संबंधी जो वहाँ निषेक पड़े थे पहले, उसमें हर एक की तीन तीन संग्रह कृष्टियाँ होती है। तो शुरुआत से विचार करेंगे तो पहले क्रोध के पहली संग्रह कृष्टि का उदय होगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वो सारे परमाणु मान रूप हो जाएंगे। मान के पहले दूसरी, तीसरी, फिर माया के पहले दूसरी और तीसरी, अंत में तीसरी कृष्टि का उदय है। यानी तीसरी कृष्टि के उदय का भी अंतिम समय लेना। इसलिए माया के जितना अनुभाग था अंतिम समय में, उससे मान के अंतिम समय में उसका अनुभाग अनंत गुना होगा। कोह संज्वलन से जहन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुना, उससे क्रोध संज्वलन की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। यहाँ पर भी कारण का कथन पूर्व के समान करना चाहिए, क्योंकि हम उल्टी दिशा से आ रहे हैं ना, ऊपर से दसवें के अंत में देखा, फिर हर एक कषाय का अपने अपने उदय का अंतिम समय देखा। तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त हम पहले पहले की बात कर रहे हैं, तो वहाँ विशुद्धि इतनी नहीं है, जो पश्चात ज़्यादा होने वाली है, तो यहाँ उसका अनुभाग उदीर्णा भी अनंत गुणी होगी। अभी हमने लोभ, फिर माया यानी संज्वलन, सभी लोभ संज्वलन, माया संज्वलन, मान संज्वलन, क्रोध संज्वलन देखा। अब हाँ, क्रोध मान माया में बादर पुष्टि ही होती है, लोभ में भी बादर पुष्टि होती है, यानी हर एक के तीन तीन, यानी बारह तो तैयार हुई थी। हाँ, इसी को संग्रह पुष्टि, अनेक पुष्टियों का जो समूह है उसको संग्रह पुष्टि कहते हैं। जैसे वर्गणाओं के समूह को हम स्पर्धक कहते हैं, वैसे कृष्टियों के समूह को हम संग्रह कृष्टि कहते हैं। तो पहले, दूसरी, तीसरे, यानी पहले का अर्थ होता है उसमें अनुभव ज्यादा है, दूसरे में और कम है, तीसरे में और कम है, और वो प्रति समय और अनुभवहीन होते ही चला जाता है आगे आगे। कृष्ण नहीं, सूक्ष्म कृष्टि नहीं होती, लोभ में ही होती है। जब लोभ का वेदक चालू हो जाता है, बादर कृष्टि उसकी पड़ी है सत्ता में, क्योंकि क्रोध के सारे परमाणु, देखो हमने पहले से शुरुआत से देखे थे, सारे नौ कषाय है वो क्रोध रूप हो जाते हैं, पुरुष वेद हास्यादि वो सब क्रोध रूप होकर नष्ट होते हैं, संक्रमण रूप से नष्ट होते हैं। क्रोध है वो मान रूप मान है, माया रूप माया है वो लोभ, यानी पूरा मोहनीय का द्रव्य लोभ रूप होकर स्थित है यहाँ पर। अब उसमें तो बादर कृष्टि थी पहले में पहले, अब उसमें जितना उदय होकर चली जाएगी उसे चली जाएगी। अब तीसरी कृष्टि का उदय नहीं होता, उसका तो सूक्ष्म करने का कार्य चलता है। जब बादर कृष्टि का उदय हो रहा है नवे सुगुण स्थान के अंत में, तब सत्ता में पड़े हुए जो परमाणु है उसके सूक्ष्म करने का कार्य चलता है, सूक्ष्म कृष्टि ने और अनुभव घटना। और जब नवा गुणस्थान समाप्त हुआ, दसवें का शुरुआत हो गई, तब ये जो सूक्ष्म पुष्टि जो की हुई है उसका उदय हो जाता। यानी हमने जो पहले देखा ना, अंतर किया था, ऊपर के परमाणु में सूक्ष्म पुष्टि करने का कार्य हुआ, और फिर वो नीचे आएगी उसकी रचना हो जाएगी। हाँ, अब उसके आगे कर देंगे। सम्मत्ते जहन्न अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, संज्वलन क्रोध लोभ माया मान क्रोध के बाद सम्यक प्रकृति को लिया, उससे सम्यक प्रकृति जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। क्योंकि जिस जीव के दर्शन मुख की क्षपणा होने में एक समय अधिक एक आवली काल शेष है, उसके पूर्वोक्त कृष्टिगत अनुभाग से स्पर्धकगत एक स्थानीय अनुभाग अनंत गुणा पाया जाता है, जो प्रकृति में जघन्य स्वामित्व रूप से स्वीकार किया गया है। आप कहेंगे वो तो संज्वलन के बाद अन्य को लेना था ना, प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान को लेते, परंतु उसका जघन्य उसके कंपैरिजन में इसका जघन्य की बात करें तो ये कितना है, तो कहती एक स्थानीय अनुभाग है, इसका उत्कृष्ट हमने द्वि स्थानीय देखा था, और इसका इसका जघन्य कितना होगा, लता वाला एक स्थानीय होगा। ये परंतु ये क्रोध संज्वलन की अपेक्षा अनंत गुना है, इतनी बात। हाँ वो बाकी तो एक स्थानीय ही है, पर उनसे ये अनंत गुना है तो एक स्थानीय है, जो प्रकृति में जघन्य स्वामित्व रूप से स्वीकार किया गया। पुरुष वेद जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे पुरुष वेद की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। मैंने सम्यक्त्व को इन बिटवीन ले लिया, नहीं तो हमने ऊपर से हम आते हैं तो हाँ लोभ, फिर माया, फिर मान, फिर क्रोध, फिर पुरुष वेद का नंबर था, परंतु उसके पहले ही सम्यक्त्व की बात ले ली उन्होंने। यथा संवेदक जीव के द्वारा, यानी जिसके वेद का उदय चल रहा है वो संवेदक जीव, संवेद भाग के अंतिम समय में बंध को प्राप्त हुए पुरुष वेद के नवक बंध का अनुभाग एक समय अधिक एक आवली काल के शेष रहने पर दर्शन मुनि की क्षपणा करने वाले जीव के सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग के संक्रम से अनंत गुणा होता है, ऐसा संक्रम में कहा है। क्या कहते हैं, संक्रम में भी यही देखा था हमने, उदयावली में तो उसका संक्रम नहीं होता, उसके ऊपर का संक्रम होता है। संक्रमण में क्या क्या देखा था, संक्रमण में सभी हो सकता है ना, अपकर्षण भी हो सकता है, उत्कर्षण भी होता है, और अन्य प्रकृति रूप भी हो सकता है, तीनों ही संक्रमण में ले लिया। यहाँ संक्रमण के पहले कंपेरिजन करेंगे, फिर अपना पॉइंट प्रूव करेंगे। अनुभाग संक्रम के प्रकरण अपना हो चुका है, अनुभाग विभक्ति भी हुआ है, अनुभाग संक्रम पर भी एक पुस्तक पढ़े, मेरे ख्याल से नवे पुस्तक में आया था, इसे पांचवे में अनुभाग विभक्ति का प्रकरण था और नवे में अनुभाग संक्रमण का प्रकरण था। तो यहाँ क्या कह रहे हैं फिर देखेंगे। पुरुष वेद के नवक बंध का अनुभाग, ये कौन सा जीव है,
पुरुष वेद।
देखो पहले में पहले संवेदी जीव था, बंध वेद का बंध कब तक है, तो संवेद भाग के अंतिम समय तक, तो उसने बंध किया वहां पर, वो बंध किया तो बंधावली तक कुछ नहीं होगा, और उसके बाद एक एक समय में उसकी एक एक फाली संक्रमित होकर नष्ट हो जाएगी। संक्रमित की बात चल रही है, यहाँ उदय की उदीर्णा की बात नहीं है, संक्रमण की मात्र चल रही है, क्योंकि जो नए बंधे हैं वो भी नष्ट होने का तरीका क्यों, अभी उदय तो मिट गया है और वहां तो क्षपणा तो होगी होगी, तो क्षपणा होगी यानी क्या होगा, किसमें संक्रमित हो, क्रोध, क्रोध संज्वलन,
संज्वलन
तो वो संक्रमण चल रहे हैं ना वहां पर, जो नए बंधे हुए पुरुष वेद के परमाणु है वो संज्वलन क्रोध रूप से परिणमित हो गए, संक्रमित हो गए, यानी वहां संक्रमण चल रहा है। तो संक्रमण में कितना अनुभाग था वो पहले बता रहे हैं, उदीर्णा तो संवेद भाग के अंतिम समय में ही रुक गई है, नवक बंध का जो अनुभाग है वो उसके अभी अंतिम समय के अनुभाग से भी बहुत कम होगा आगे चलकर। तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, फिर पढ़ूंगी मैं इसको, संवेदक जीव के द्वारा संवेद भाग के अंतिम समय में बंध को प्राप्त हुए, ये बंधे हुए पुरुष वेद के नवक बंध का अनुभाग एक समय अधिक एक आवली काल के शेष रहने पर, यानी वहां जो अनुभाग है जो भी वो क्रोध रूप से संक्रमित होने वाले हैं, वहां पर जिसका अनुभाग है, दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले जीव के सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग के संक्रम से अनंत गुणा होता है। अभी यहाँ सम्यक्त्व में कौन सा संक्रमण हो रहा है, संक्रमण हो रहा है ने वो स्थिति का अनुभाग का संक्रमण है, घटना उदय में आ रहा है ना वहां पर, वहां तो अपकर्षण होना घटना इस रूप से हम उसको ले सकते हैं, तो उससे अनंत गुणा होता है ऐसा संक्रम में कहा है। एक बार पुनः इस अंतिम समय के नवक बंध से वहीं पर पुरुष वेद के जघन्य अनुभाग का उदय अनंत गुना है। अंतिम समय में जो बंधा था
उससे उदय के पहले
उससे वहाँ का उदय अनंत गुना था, क्योंकि जितना उदय है उतना तो नहीं बनता है, उससे अनंत गुना ही बंधेगा वहाँ पर। पुनः इस उदय से भी समयाधिक एक आवली के उदीर्णा विषयक अंतिम समय में स्थित सवेद जीव के पुरुष वेद की जघन्य अनुभाग उदीर्णा अनंत गुण। पुरुष वेद का जघन्य कब पाया जाता है? सवेद भाग में आवली प्लस एक समय बाकी है तब, अंतिम समय में नहीं लिया उसका। निकालो स्वामी को, निकालो जघन्य का स्वामी। लोभ में तो समय और आवली लेखा, पेज नंबर 59 58 निकालो। यहाँ एक्चुअली 55 से शुरू हुआ है तो इसके भी पहले
समय आती कावली के उदीर्ण विषय का अंतिम समय वर्ष हम 59
त्रिवेदी के
पुरुष
वेद का भी ऐसा ही है समय अधिक आवली के, नपुंसक वेद में भी समय अधिक आवली के। मैं आपको ये लोभ संज्वलन की बात बताना चाहती थी। लोभ संज्वलन में भी उसी 59 पर पहला सूत्र समय और आवली, और क्रोध मान और माया में अंतिम समयवर्ती उसका वेदक भी लिया, क्रोध वेदक मान वेदक माया वेदक, उसमें तो अंतिम समय लिया था। क्रोध मान माया में अंतिम समय लिया था, लोभ में समय और एक समय और आवली लिया था, और वेदों में भी समय और एक अवली लिया। यहाँ क्या बात शुरू करना चाहते हैं? नवक बंध का जो अंतिम समय में उदय उसका संक्रमण होगा, उदय तो रुक गया है, तो उदय के अंतिम समय में जो बंधा था वो अपनी अपनी आवली पूरी होने के पश्चात उसका एक एक खाली करके उसका चलेगा आगे। तो समय और एक आवली बाकी है तब उसकी संक्रमण हो रहा था, तो उस संक्रमण के यहाँ पर भी सम्यक के जघन्य अनुभाग से उसका अनुभाग अनंत गुना था पुरुष वेद का। अब उसकी तो बात छोड़ो, कहते हैं जब अंतिम समय में बंधा है उसमें जो उदय था उस उदय से भी वहाँ बंधा हुआ अनुभाग अनंत गुना ही है। उदय यानी उसकी उदीर्णा समझ नहीं ना, उसका उदय हो रहा था यानी उदीर्णा के द्वारा उदय हो रहा था। अभी उस पोजीशन पर जो उदय था वो तो उदीर्णा द्वारा नहीं था, उदीर्णा कब रुकी थी? समय और आवली पूर्व में। उदय तो अंतिम समय तक चला, उदय तो वेदक यानी जो पुरुष वेद का अंतिम समय है सवेद भाग का अंतिम समय तक उदय है, और उदीर्णा कहाँ तक है?
आवली
प्लस एक समय तक है पूर्व तक, तो और पीछे आएंगे तो और अनंत गुना हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर पुरुष वेद की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुण किससे? वो सम्यक के जघन्य से पुरुष वेद की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुण। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, शपक श्रेणी में बंध और उदय के आगे कहे जाने वाले अल्प बहुत्व सूत्र से जाना जाता है। वहां यदि सम्यक्त्व की जघन्य अनुभाग उदीर्णा से पुरुष वेद के अंतिम समयवर्ती जघन्य बंध का भी अनंत गुणापना संभव है, क्या कहते हैं? जहां सम्यक्त्व की जघन्य अनुभाग उदीर्णा से पुरुष वेद के अंतिम समय में जो जघन्य बंध हुआ था वो भी अनंत गुणा है, तो उससे अनंत गुणे पुरुष वेद की जघन्य अनुभाग उदीर्णा क्योंकि वहाँ का बंध अनंत गुना है, बंध से उदय अनंत गुना है, और उदय से जहाँ अंतिम समय वर्ती उदीर्ण वो अनंत गुण है। ऐसे उल्टा 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 स्टेप बाय स्टेप थ्रू नहीं समझे। देखो फिर से यहाँ हम क्षपक श्रेणी में देखेंगे क्या क्या होता है। ये सवेद भाग का काल चल रहा है, वो उसका अंतिम समय। पुरुष वेद का बंध इस समय तक चल रहा है, उसको हम नवक समय प्रबंध कहते हैं, अंतिम समय वाला। वैसे वो पूर्व से जो बंधा है आवली काल, दो आवली काल पहले, वो भी वहाँ उसका कुछ ना कुछ पाया जाता है, अभी उसके डिटेल में अपना वो विषय नहीं है। यानी यहाँ पर जो बंधा है वो उसके पश्चात अपनी अपनी आवली पूरी होने पर उसके एक एक फाली करके यहाँ अंतिम समय तक उसका संक्रमण होकर वो पूरा हो जाएगा। ये बात ख्याल में आती है ना? तो यहाँ कहते हैं कि ये जो बंधा है अनुभाग, ये बंधा हुए से यहाँ पर इसका अनुभाग और बहुत कम हुआ है, परंतु यहाँ पर जितना अनुभाग है अंतिम समय वर्ती एक समय पूर्व में जो संक्रमण हो रहा है उसका,
यह जो बंदा लास्ट समय में बंदा है उसके ऊपर जो उदयावली प्लस वन समय में जो है वो अनंत गुणा है, ऐसा बताया ना?
यहाँ पर अनंत गुणा है।
हाँ।
तो वहाँ पर कैसे होगा अनंत गुणा? ये अनंत गुणा सम्यक से अनंत गुणा है, इससे अनंत गुणा नहीं है, इससे तो अनंत गुणा हीन हो जाएगा। आगे चल के आगे जितने बढ़ेंगे उतनी विशुद्धि बढ़ रही है। यहाँ इस पोजिशन पर समय और एक समय और आवली पूर्व में,
अच्छा ये सवेद काल
संक्रमण भी एक समय और आवली, नवक समय प्रबद्धता भी ये अंतिम समय है।
हाँ।
उसके बाद वो एक एक समय की बात, एक एक समय वाले वो आवली वाले एक एक समय में संक्रमित हो गए, कन्वर्ट हो गए, तो उसका संक्रमण रूप से कन्वर्जन आवली और एक समय पूर्व रुक जाएगा, ये उसका अंतिम समय। आवली और एक समय ये नवक बंध का अंतिम समय का संक्रमण है, उसके बाद उसको संक्रमण नहीं कहेंगे, एक एक वो चेंज हो कन्वर्ट होगा। यहाँ पर इसका जो पुरुष वेद का जो अनुभाग है संक्रमण होने वाला, जगन्य में जगन्य अनुभाग, वो सम्यक प्रकृति के जगन्य से ये भी अनंत गुना। अब ये यहाँ पर आया है, ये बंधा यहाँ बंधा था, यहाँ पर उसका जगन्य हो गया, इससे यहाँ जो बंधते समय उसका अनंत गुना था।
यहाँ पे हम लोग जो सवेद प्रकाश के अंतिम समय में है उसके पहले आवली प्लस एक समय लेना है
ना?
उदीर्णा तो वहाँ पे
उदीर्णा की बात नहीं चल रही यहाँ पर, यहाँ उदीर्णा की वो तो बाद में आएगी उस पॉइंट पर।
हाँ।
अभी जो पॉइंट चल रहा है उसको पहले समझो। बंधा हुआ है आवली क्याल के बाद उसके एक एक खाली रूप जो कुछ होगा उसका संक्रमण चल रहा है, नवक समय प्रबद्ध का ही मात्र आवली और एक समय पहले उसका संक्रमण रुक गया, उस पोजीशन पर इसका जघन्य संक्रमण था, अनुभाग संक्रमण, वो सम्यक प्रकृति का जो आवली एक समय बाकी था सपना में, तब उसका जो अनुभाग था उससे ये अनंत गुणा है। अब इससे यहाँ जब बंधा था अनुभाग, जब बंधा था नवक समय बंध का अंतिम पॉइंट पर, वो उससे अनंत गुणा था। अब यहाँ का बंध और यहाँ का उदय, यहाँ जो बंधा था उससे यहाँ का उदय अनंत गुणा था। अब यहाँ का उदय अनंत गुणा है तो उसके आवली और एक समय पूर्व का उदय उदीर्णा क्या होगा? वो उससे भी अनंत गुणा होगा। तो इसलिए इसको यहाँ अनंत गुणा, यानी सम्यक प्रकृति का अनंत गुणाहीन था तो सम्यक प्रकृति से पुरुष वेद का जघन्य अनंत गुणा बताए। देखो ये समाधान फिर पढ़ेंगे 129 पेज पर, क्षपक श्रेणी में बंदर उदय के आगे कहे जाने वाले अल्पभूतव सूत्र से जाना जाता है। वहाँ यदि सम्यक्त की जघन्य अनुभाग उदीर्णा से पुरुष वेद के अंतिम समयवर्ती जगन्य बंध का भी अनंत गुणा संभव है, तो उससे अनंत गुणे पुरुष वेद की जगन्य अनुभाग उदीर्णा निश्चय से अनंत गुणी होती है, निश्चित रूप से, इसमें संदेह नहीं है। ख्याल में आई बात? वहाँ बंध भी अनंत गुणा है, तो उदीर्णा उदय तो यहाँ पर भी अनंत गुणा है, और उसके आवले और एक समय और नीचे चले आओ तो वहाँ तो उससे अनंत गुणा होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात है। अब पुरुष वेद के बाद इत्थि वेदे जहन्य अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणा, उससे स्त्री वेद की जघन्य अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणी है, क्योंकि पुरुष वेद के जघन्य स्वामित्व के विषय से नीचे अंतर्मूर्त उतर कर एक समय अधिक एक आवली के अंतिम समय में स्थित स्त्री वेद क्षपक के जघन्य स्वामित्व उपलब्ध होता है। स्त्री वेद के उदय सहित चढ़ने वाले जीव के जब उदय में आवली और एक समय बाकी है तब उसकी अंतिम समय की उदीर्णा है, उसके बाद उदीर्णा रुक जाती है और वहीं पर उसकी जघन्य उदीर्णा चले अनुभाग उदीर्णा, क्योंकि पुरुष वेद के सही चढ़ने वाले का जो सवेद भाग है वो लंबा है, स्त्री वेद सही चढ़ने वाले का उदय जल्दी मिल जाता है और पुरुष वेद सही चढ़ने वाला का वो सवेद भाग और बड़ा है, वो बाद में रुक जाता है, एक बात। और ऐसे भी हमने इसमें अनुभाग की अपेक्षा वो स्त्रीवेद पुरुषवेद में ऐसे भी अंतर था ही था, ओरिजिनल ही था। नपुंसक वेद जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे नपुंसक वेद की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी
है।
यद्यपि इन दोनों का स्वामित्व का विषय समान है, स्वामित्व का विषय समान है, उसमें काल में कोई डिफरेंस नहीं है, और इन दोनों की एक स्थानीय अनुभाग उदीर्णा प्रति समय अनंत गुणी हानि द्वारा जघन्य भाव को प्राप्त हुई है, तो भी पूर्वोक्त प्रकृति से इस प्रकृति के महात्म्यवश अनंत गुणापना विरुद्ध जानना चाहिए। हमने देखा था ये अति अप्रशस्त है नपुंसक वेद, पहले हमने देखा था ना उसकी अपेक्षा से तो उसका ओरिजिनली अनुभाग अधिक होता है नपुंसक वेद का, क्योंकि दोनों का ही स्वामित्व एक समय कहने का कारण है। श्री वेद सहित चढ़ने वाला जीव क्या करता है,
पहले
नपुंसक वेद की क्षपणा पूरी करता है और बाद में श्री वेद की क्षपणा, परंतु नपुंसक वेद सहित चढ़ने वाला क्या है, जरा सुनो, पहले जहाँ नपुंसक वेद की क्षपणा अन्य जीवों की पूरी होती है वहाँ उसकी नहीं पूरी हुई, वहाँ से श्रीवेद की क्षपणा चालू होती थी तो उसका भी संक्रमण उसी समय से चालू हो गया, दोनों का कर रहा है और दोनों को एक समय पहले श्रीवेद की पूरी करता है, यानी उसमें दोनों में कुछ विशेष फर्क नहीं है, परंतु प्रकृतिवश उसमें अनुभाग में देरी है। नपुंसक वेद प्रकृति ऐसी है कि उसमें अनुभाग ज्यादा है, इसलिए वो अनंत गुणा का, उससे हास्य की ऊपर पड़ेंगे, हास्य जहन अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे हास्य की जघन अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। वैसे हमने उत्कृष्ट में तो पहले नपुंसक वेद लिया, फिर अरति लिया, शोक लिया, फिर भय जुगुप्सा लिया, बाद में वो हाँ वो तो स्त्री वेद लिया, पुरुष वेद, बाद में हास्य रति वगैरह लिया, तो यहाँ तो जघन्य में पहले रति और बाद में हास्य लिया था, हाँ, और यहाँ जघन्य में देखो पहले हमने लोभ से शुरू किया था, माया, मान, क्रोध, फिर सम्यक्त्व, फिर पुरुष वेद, फिर स्त्री वेद, नपुंसक वेद, अब हास्य की, ऐसे भी उसका जघन्य क्योंकि अपूर्वकरण के अंत में होता है, ये भी एक बात है, तो हास्य की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है, क्योंकि अनिवृत्ति परिणाम से अंतिम समयवर्ती अपूर्वकरण की अनंत गुणी हीन विशुद्धि से होने वाली अनिवृत्ति परिणाम से नहीं, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान से कहो, यहाँ जो अपूर्वकरण के जो अंत समय में अनंत गुणी हीन विशुद्धि है उससे होने वाली हास्य की अनुभाग उदीर्णा का देशघाती द्विस्थानीय रूप से जघन्यपना उपलब्ध होता है। यहाँ से द्विस्थानीय, वहाँ तो एक स्थानीय था ना ऊपर, क्योंकि वो प्रति समय अनंत गुणी हानि द्वारा एक स्थानीय हुई थी, अब यहाँ द्विस्थानीय है। हृदय जहन्न हुआ है, जहन्न अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे रति की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। दुगुण छाए जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे जुगुप्सा की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी। तीन वेद के बाद हास्य, फिर रति, फिर जुगुप्सा और भय, उल्टे क्रम से ले रहे हैं आप, क्योंकि बढ़ते वही लेने ना, वहाँ उत्कृष्ट से हीन की तरफ देख रहे थे, अब यहाँ जघन्य में और ज़्यादा ज़्यादा किसका ज़्यादा जघन्य वाला ऊपर ऊपर की लेवल है उसकी बात देख रहे हैं। तो जुगुप्सा के अनुभाग उदीर्ण अनंत गुण है, भय जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे भय की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। सोगत से जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे शोक की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। अरदीय जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे अरति की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। ये सूत्र सुगम है क्योंकि पहले कारण का निर्देश कर आए हैं, यानी जो प्रकृति की वस्तु जो अप्रशस्त होती है उसमें वो अधिक अधिक रहता है, अधिक अप्रशस्त, वैसे है तो सभी अप्रशस्त मोनी की, उसमें भी कुछ तरतम भाव है। तो पहले हमने संज्वलन को लिया, फिर सम्यक प्रकृति को लिया, फिर पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, उसके बाद
हास्य
को लिया,
रति,
रति
नहीं, जुगुप्सा,
जुगुप्सा पहले, फिर भय,
शोक,
हाँ शोक और अरति, हाँ पहले शोक फिर अरति। पच्चक खानावरण जहन्न अनुभाग उदीर्णा अन्नदरा अनंत गुणा, उससे प्रत्याख्यानावरण की अन्यतर जघन्य अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणी है। अन्यतर इसके लिए कहा था कि सब कुछ, कोई क्रोध मान माया लोक की अन्यतर की अर्थ होता है। यथा छह नौ कषायों की अनुभाग उदीर्णा अपूर्व कर्म संबंधी परिणामों के द्वारा बहुत घात को प्राप्त होकर अपूर्वकरण के अंतिम समयवर्ती विशुद्धि द्वारा देशघाती रूप से जघन्यपने को प्राप्त हुई है, किंतु प्रत्याख्यानावरणीय कर्मों का तो अपूर्वकरण की विशुद्धि से अनंत गुणीहीन संयता संयत की अंतिम विशुद्धि से जघन्य स्वामित्व प्राप्त हुआ है, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण का जघन्य मंजुबेन किसके होगा, प्रत्याख्यानावरण के जघन्य अनुभाग उदीर्णा कौन से जीव के होगी, हाँ कौन सा वाला संयम, चौथा वाला, हाँ पांचवे से सातवें में जाने वाला बरोबर, और वहाँ हास्य के जघन्य कब थे, अपूर्वकरण के अंतिम समय, तो यहाँ विशुद्धि कम है ना, तो यहाँ अनुभाग अनंत गुणा होगा। इसलिए इनकी सर्वघाती स्वरूप जघन्य अनुभाग उदीर्णा, क्योंकि प्रत्याख्यान तो है सर्वघाती, छह नौ कषायों की जघन्य अनुभाग उदीर्णा से अनंत गुणी प्राप्त होती है।
ये चार स्थानीय होगी,
चार स्थानीय कहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सर्वघाती है ना, प्रत्येक खानावरण सर्वघाती रूप से, अब उसमें तरतमता है, तरतमता ने जघन्य अनुभाग को प्राप्त हुई थी। सर्वघाती कौन कौन से? सर्वघाती चतुस्थानी भी हो सकते हैं, त्रिस्थानी भी हो सकते हैं, द्विस्थानी भी हो सकते हैं। तो उसको चतुस्थानीय तो नहीं कह सकेंगे, जघन्य की बात चल रही यहाँ पे।
तो ये द्विस्थानीय लोग
हाँ जघन्य में ले सकते उसको। अभी सत्ता में जब द्विस्थानीय रूप से होकर बाद में तो सत्ता में सत्ता की
बात है, इसलिए मैंने पूछा कि चतुस्थानीय होगी कि द्विस्थानीय।
जब जघन्य बात चल रही है ना यहाँ पर, चतुस्थानीय क्यों कहते हैं?
नीचे के गुण स्थान में इतनी द्विस्थानीय हो जाएगी उसके द्वारा कुछ
उदय रूप की बात चल रही है सत्ता की
नहीं, ये तो उदीर्णा की बात चल रही है।
उदीर्णा है ना उदय, जिस रूप में उदय हो रहा है उसकी बात यहाँ चल रही है। उदीर्णा का अर्थ क्या है?
उदय है
हाँ, किस रूप से उदय चल रहा है? सत्ता में बोले ना पड़ा है, सत्ता में जो कुछ पड़ा होगा उससे कुछ लेना देना नहीं हमें।
चतुर्थानीय वहाँ पे है सत्ता में, तो सभी से सभी जगह से उदीर्णा होते हैं ऐसे तरह।
उदीर्णा किस रूप से होती है? सभी जगह से वो स्थिति की अपेक्षा मत करते, किस रूप से उदय में आ रही है उसको हम उदीर्णा अनुभव उदीर्णा कहते हैं। स्वामित्व में है क्या? देखो उसका जघन्य कितना है। आपको चतुस्थानी द्विस्थानी का विकल्प आया है तो देख लो। हाँ 38-39 पर ही मैं देख रही हूँ। आपको प्रश्न प्रत्याख्यानावरण का है, बारह कैसे कहाँ मिले उसको?
नहीं ये तो उत्कृष्ट की बात है,
कहाँ पर देख रहे हैं
आप? 38 पे तो उत्कृष्ट की बात है।
अभी उत्कृष्ट भी द्विस्थानीय होती है तो जघन्य आपको चतुस्थानीय होने की क्यों?
नहीं होगा,
वहाँ जघन्य उत्कृष्ट करने मात्र अनुभव उदीर्णा इतना ही लिया है उन्होंने। फोर्टी पे मैं देख रही हूँ आगे की उन्होंने, नहीं छह नौकाशायन की बात कर रहे हैं वहाँ पर।
नहीं यहाँ पे दिया है ना संयोता से आदि आगे के गुणस्थानों में छह नपुंसक के अनुभव तो द्विस्थानीय का नीचे ठीक है। अच्छा वहाँ पे द्विस्थानीय की छह नौ
छह नौकाशायन की बात
ये हाँ
आपका समाधान हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे। ये लोग और भी आगे ले जघन्य का प्रकरण है,
जघन्य में दिया नहीं है।
43 में मिथ्या तो बारह कषाय छह कषाय से जघन्य अनुभव उदीर्ण द्विस्थानीय है ले लो। 96 नंबर का पॉइंट
12,000 लिए थे।
नहीं समाधान हुआ तो रुकेंगे
अभी हो गया नहीं नहीं तो नहीं चुप नहीं बैठा
एक कहां से हम यहां आ गए 130 से आ गए ना रेफरेंस फॉर पेज 130 जब सर्वघाती में चतुस्थानीय त्रिस्थानीय द्विस्थानीय है और जब हम जघन्य अनुभाग उदीर्ण कह ही रहे हैं तो द्विस्थानीय ही होगा उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर इसको पढ़ेंगे। पहले हमने छह कोषायन की बात पढ़ी थी और उसके तो जघन्य अपूर्वकरण के अंतिम समय में था और प्रत्याख्यानावरण का जघन्य तो संयता संयत से संयम को प्राप्त होने वाले जीव के अंतिम समय में देखा, यानी वो संयता संयत की अंतिम विशुद्धि और वो सर्वघाती स्वरूप ही है, फिर भी वो द्विस्थानी हो जाए। वो जघन्य अनुभाग उदीर्णा जो है वो छह नौकषायन के जघन्य से अनंत गुणी है, ये बात यहाँ सिद्ध कर रहा है। अपचखानावरण जघन अनुभाग उदीर्ण अन्नधरा अनंत गुणा, उससे अप्रत्याख्यानावरण की अन्यतर जघन अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है, क्योंकि पूर्व की विशुद्धि से संयम के अभिमुख हुए अंतिम समयवर्ती असंयत समय दृष्टि की विशुद्धि द्वारा इन प्रकृतियों का जघन्यपना प्राप्त होता है। यहाँ किस रूप में उदय चल रहा है उसकी बात है, उदीर्णा की बात है, क्योंकि सत्ता में पड़े पड़े जब उनका क्षय होगा तब उनका जघन्य होगा। सत्ता वाला अनुभाग उसमें विभक्ति में हमने उसको देखा था, उसकी बात यहाँ नहीं है। मंजू बेन ख्याल में आ रही बात, चौथे से जो सातवें में जाएगा उसके अंतिम समयवर्ती जो चौथा गुणस्थान वाला जीव है वहाँ जो उसकी विशुद्धि है वो भी द्विस्थानीय तो ही जाए द्विस्थानी हो गया तो वह तो हाँ वो भी द्विस्थानी है। हाँ बिल्कुल
तो ऐसे भी द्विस्थानी है,
वही तो उसका जघन्य भी द्विस्थानी ही होगा,
उसको से भी द्विस्थानी होगा, कभी होती नहीं,
उसी से तो ये प्रूव होता है। अल्पभूत में उसका नंबर अब आया है ना, यानी इसके पहले से उससे भी जघन्य वाले थे। यह अप्रत्याख्यानावरण की बात हो गई। सम्मामिच्छत्तस्य जघन अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। अनुभाग हुआ अनुभाग चाहिए, हिंदी में अनुभाग लास्ट लाइन, नल वाला न चाहिए, अनुभाग अपने कर लिया क्या? अच्छा ठीक, अनंत गुणी है क्योंकि अप्रत्याख्यानावरणीय और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य उदीर्णा में सर्वघाती द्विस्थानीय पने की अपेक्षा यद्यपि कोई विशेषता नहीं है तो भी, ख्याल में आई बात? अभी प्रत्याख्यानावरण की छोड़ो, वो प्रत्याख्यान भी सर्वघाती द्विस्थानीय है और ये भी सर्वघाती द्विस्थानीय हो, उसका जघन्य हो या उत्कृष्ट हो द्विस्थानीय होगा, तो भी पूर्व की अपेक्षा विशुद्धि के प्राधान्यवश इसके अनंत गुणेपने की सिद्धि निर्बाध रूप से पाई जाती है। यानी चौथे से सातवें में जाने वाला अधिक विशुद्ध है और ये तीसरे से चौथे में जाने वाला कम विशुद्ध है, तो यहाँ उसकी अनुभव उदीर्णा भी अधिक होगी, अनंत गुणा होगी। अनंतानुबंधिनम जहन अनुभाग उदीर्ण अन्नधरा अनंत गुणा, उससे अनंतानुबंधियों की अन्यतर जगन अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। क्योंकि संयम के अभिमुख हुए अंतिम समयवर्ती सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि के इसके जगन्यपना प्राप्त होता है। देखो बहुत सारी ये अनुभाग में भी कितनी क्लैरिटी हो रही, कहाँ कौन से जीवों की, यानी किस रूप से उदय चलता है। उदीर्णा का अर्थ क्या है, किस रूप से वहाँ उदय उसका चल रहा है। उदय में तो कभी कभी आवली के अंतिम समय तक उदय चलता है, परंतु यहाँ उदीर्णा में बहुत सारी बातें स्पष्ट हो रही है। अब अनंतानुबंधी का जगन्य के बाद मिथ्यात्व का जगन्य आ गया। मिथ्यत्वस्य जहन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे मिथ्यात्व की जगन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। क्या हुआ, अच्छा नंबर दे दिए हमने, नहीं दिए। क्योंकि उभयत्र स्वामित्व विशेष का अभाव होने पर भी प्रकृति विशेष के कारण ही स्वामित्व विशेष का अभाव, दोनों ही उसी समय प्राप्त होते हैं। अनंतानुबंधी का जगन्य भी और मिथ्यात्व का भी जगन्य, ये मिथ्यात्व से जो संयम को प्राप्त होने वाले जीव है सर्व विशुद्ध, उन्हीं के होता है। इसलिए स्वामित्व में कोई डिफरेंस नहीं होने पर भी, विशेष का अभाव यानी कोई डिफरेंस नहीं होने पर भी, प्रकृति विशेष के कारण ही अनंतानुबंधियों के अनुभाग से मिथ्यात्व का अनुभाग सर्वकाल अनंत गुणे अधिक रूप से अवस्थित देखा जाता है। वो प्रकृति रूप से उसका अनुभाग अनंत गुणा है ही। एवं ओघ जहन्नव समत्तो, इस प्रकार ओघ से जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ। प्रकृत अर्थ का उपसंहार करने वाला यह सूत्र वचन सुगम है। अब आदेश का कथन करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध कहते हैं। इन्होंने आदेश में भी बता दिया, नहीं तो हमेशा उच्चारणा के अनुसार बताते। निरय गदीये सव मंदानुभागा सम्मत्तस्य जहन्न अनुभाग उदीर्णा। अब हमें ओघ में जो हमने देखा था, ओघ में तो संज्वलन की क्षपणा होती है, वेदों की होती है, तो वहां तो पहले में लोभ, फिर माया, फिर मान, फिर क्रोध, फिर सम्यक को लिया था, फिर पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुसक वेद वगैरह वगैरह को लिया। अभी पहला नंबर यहाँ किसका,
सम्यक,
क्योंकि कृतकृत्य वेदक रूप से आकर वहाँ सपना में उसके एक समय और अवली बाकी है, तब उसकी जघन्य अनुभाग उदीर्णा होगी। इतना वो कम कोई नहीं होगा, एक स्थानीय दूसरी कोई प्रकृति नहीं होगी यहाँ पर। तो नरक गति में सम्यक्त्व की जघन्य अनुभाग उदीर्णा सबसे अधिक मंद अनुभाग वाली, यानी जघन्य में सबसे मिनिमम, क्योंकि वह एक स्थानीय स्वरूप होती है। एक स्थानीय का अर्थ क्या है लक्ष्मी भाई, बस लता रूप है वो, एक स्थानीय रूप है, और उसमें भी मंद में मंद हो। हस्तस्य जहन्न अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, इसके बाद हास्य को लिया, यानी उसमें वो बहुत अप्रशंसन ही लिया, हास्य वाला लिया, उससे हास्य की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। क्योंकि वह देशघाती द्विस्थानीय स्वरूप है, रति ये जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे रति की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। दुगुण चाहे जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे जुगुप्सा की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। भयस्य जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे भय की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। सोगस्य जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे शोक की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। अरदीये जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे अरति की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुण है। ये सूत्र सुगम है क्योंकि इनके कारणों का बहुत बार प्रलोकन किया है। वैसे ओग में भी हमने हास्य के बाद रति फिर जुगुप्सा भय जुगुप्सा भय शोक और अरति देखा। अब उसके बाद नौ से वेदे जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे नपुसक वेद की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। यहाँ पर भी कारण का उपन्यास सुगम है क्योंकि उसका कथन अनेक बार कराए हैं। यानी प्रकृति विशेष के कारण ही ये बात बनेगी, क्योंकि स्वामित्व की अपेक्षा कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
पड़ेगा ना,
क्या पड़ेगा?
नपुसक वेद का उदय पहले गुणस्थान में है तो उसकी उदीर्णा पहले गुणस्थान में।
ये जघन्य की बात कर रही हूँ, नारकी के पहले, नारकी में जघन्य कब होगा?
नारकी सब विशुद्ध
नारकी, और हास्य रति वगैरह के लिए
वो भी वहाँ पे होगी।
वही तो मैं कह रही हूँ, सामित्व की अपेक्षा कोई फर्क नहीं है। जो चौथे गुणस्थान वाला सर्व विशुद्ध होगा उसकी इन सभी प्रकृतियों की जघन्य है, परंतु सभी की जघन्य भले हो परंतु जघन्य अनुभाग जो सबका है वो एक जैसा नहीं है। किसका जघन्य मिनिमम की ओर है, किसका जघन्य अधिक है, उसकी बात यहाँ चल रही है। अभी आगे संजलन से जहन अनुभाग उदीर्ण अन्नदरा अनंत गुणा, उससे संजोलनों की अन्यतर जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। क्योंकि देशघाती द्विस्थानीयपने की अपेक्षा विशेषता न होने पर और स्वामित्व की अपेक्षा विषय में भेद का अभाव होने पर कषायों के अनुभाग के महात्म्यवश पूर्व की अपेक्षा इसके अनंत गुणेपने की सिद्धि निर्बाध रूप से पाई जाती है।
हमने ओग में इसमें
हाँ क्या लिखा? ओग में
नहीं, ओग में उत्कृष्ट में हमने पहले अनंत अनुबंधी को
लिया था। नहीं बना, यह जघन्य की बात चल रही है। संजोलन का उत्कृष्ट की बात नहीं हो रही, संजोलन के जघन्य की बात हो रही। आपका क्या प्रश्न है?
नहीं
और स्वामित्व की अपेक्षा विषय में भेद का अभाव होने पर, यानी स्वामित्व दोनों का समान होने पर, स्वामित्व दोनों का ही समान है। देशघाती द्विस्थानीय क्यों कहा उनको? संजोलन का तो अभी तो सर्वघाती चल रहा है ना, संजोलनों का नहीं, मगर वो देशघाती द्विस्थानीय कहते ना। देशघाती द्विस्थानीयपने की अपेक्षा भी और स्वामित्व के विषय की भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी कषायों के अनुभाग के महात्म्यवश, यानी वो तो नौ कषाय था और ये कषाय है, इसमें अनुभाग अधिक होता है इसलिए इसमें अनंत गुणा है, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। वो निकालो, अभी हमने कहाँ देखा था स्वामित्व? 43 पर देखा था ना, उसमें ओग देखो। नारकियों में मिथ्यात्व 16 कषाय 7-9 कषाय की जघन्य अनुभाग उदीर्णा द्विस्थानीय है। आप परंतु द्विस्थानीय है, पर उसको घाती अघाती के अपेक्षा क्या कहा? द्विस्थानी इतना ही लिखा है
यहाँ पे, ऊपर जो ओक से बताया है वो 12 कसाई की द्विस्थानीय बताई है, यहाँ पे 16 कसाई की द्विस्थानीय बताई है।
कहाँ है ओग में?
नहीं, ओग में 12 कसाई की द्विस्थानीय बताई है, और ये 97 पॉइंट में इसकी 16 कसाई की द्विस्थानीय बताई है।
नेचुरली ओग में तो 12 का चयन संयोजन का एक स्थानीय हो जाता है ना।
अच्छा, वो संयोजन में, सॉरी,
ओग में जगह नहीं, संयोजन की एक स्थानीय होती है।
मैं उल्टा सोच रहा हूं,
कहां मिला वो आपको? वहां उसका देशघाती सर्वघाती कुछ लिखा है उसमें?
नहीं नहीं, ओग से मिथ्या तो 12 का चयन कसाय की जगह नहीं, अनुभाग उदयना द्वि स्थानीय है 96 पॉइंट का।
हाँ, वही वही। हाँ,
और ये 97 पॉइंट में 16 कसाई की द्विस्थानीय है।
ये तो स्थान संज्ञा में, घाती संज्ञा देख लो। अब यहाँ 41 पेज पर जहाँ घाती संज्ञा लिखी है, यहाँ मिथ्यात्व तीसरी लाइन संज्ञा की, ओव से मिथ्यात्व 12 कषाय सम्यक मिथ्यात्व की, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण सर्वघाती है। यानी उसमें 12 कषाय लिए। अच्छा, अभी चार संयोजन के बारे में क्या लिखा है?
उत्कृष्ट तो सर्वघाती,
उत्कृष्ट है तो सर्वघाती, अनुत्कृष्ट है सर्वघाती भी है, देशघाती भी है। जगन्य में उनका स्थानों का अलग अलग से बताया। अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं देखो, संज्वलनों की अन्यतर जगन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। संज्वलनों को यहाँ देशघाती क्यों कहा, ये मेरा प्रश्न था। हाँ, मैंने दोनों में द्विस्थानीय, देशघाती द्विस्थानीय पने की अपेक्षा विशेष, इन्हें वो भी सर्वघाती द्विस्थानी ऐसा कहना था।
हाँ आगे लिखा है ना 39 पेज, तो चार संग्रह और तीन वेदों का अनुभव उदीर्णा देशघाती और सर्वघाती भी है।
कहाँ कहाँ पर लेना, आप कहाँ पर पढ़ रहे हैं?
39 पेज पे।
39 पेज,
चार संजलन और तीन वेदों का अनुभव को लेना देशघाती है और सर्वघाती भी है।
नेचुरली, परंतु हम यहाँ कहाँ चल, नारकी में चौथे गुण स्थान में
सर्वघाती,
देशघाती कैसे? यानी संजलन का उदय भी चल रहा है, संयम भी चल रहा है,
नहीं है ना?
हाँ 40 पेज, 92 पॉइंट, चार संज्वलन की एक इंद्रिय में भी श्लेष राती। अच्छा अच्छा, संगी मिथ्यादिशि गुणस्थान तक के इन गुणस्थानों में भी विशुद्धि के काल में देशघाती उद्योग का प्रतिषेध नहीं है। अच्छा ठीक है, केवल संगी प्राय विशुद्धि से देशघाती उद्योग की ऐसी बात नहीं है, परंतु असंगी पंचेंद्रिय और विकलेंद्रिय प्राय की विशुद्धि से भी इन कर्मों की देशघाती उद्योग का निषेध नहीं है। हाँ ये बात लेना वहां पर,
तो क्या चौथे गुण स्थान से
वहां तो एक इंद्रिय में भी उन्होंने देशघाती पना ले लिया है, तो देशघाती द्विस्थानिक 132 पेज के लिए जो हमें चाहिए था वो मिल गया पेज 40 पर। मैंने ये दोनों ही देशघाती द्विस्थानीय है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात, स्वामित्व का ये दोनों का एक ही जगह जघन्यपने का स्वामित्व होगा, फिर भी वो तो नौकशा है और ये कशा है, इसका अनुभाग अधिक होगा। इतनी बात, आगे बढ़े अभी। अब अपचक खाना वर्ण जहन अनुभाग उदीर्णा अन्नदरा अनंत गुणा, उससे अप्रत्याख्यानावरण कर्मों की अन्यतः जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है, क्योंकि स्वामित्व विषयक भेद का अभाव होने पर भी सर्वघाती पने के महात्म्यवश पूर्व की अपेक्षा इसके अनंत गुणी अनुभाग उदीर्ण रूप से उपलब्ध होती है। यानी ये अभी सर्वघाती, वो देशघाती रूप से होती है।
क्या मनुष्य में भी चौथे गुण स्थान में संज्वलन की देशघाती हो ही जाएगी ना?
अभी हमने पढ़ा ना, एक इंद्रिय में भी होती है। अभी वही तो पढ़ के आए ना, अभी 40 पृष्ठ पर पढ़ के आए हैं। यानी सर्वघाती प्रकृतियां कौन कौन सी है मोहिनी में?
अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व,
मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी
और संज्वलन
और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान,
सॉरी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान
और सम्यक मिथ्यात्व।
हाँ सम्यक मिथ्यात्व,
ये सर्वघाती है। हाँ। और
बस
संज्वलन तो देशघाती में लेना,
देशघाती में
तो नो प्रॉब्लम ना उसके। हाँ
तो
उसके स्पर्धक, यानी सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक, उसमें दोनों है। जिसमें सर्वघाती है उसका द्विस्थानीय भी सर्वघाती रूप से होगा, और जो देशघाती प्रकृतियां हैं
उसका द्विस्थानीय,
दोनों पॉसिबिलिटी, इसलिए उसको देशघाती में लिया। समझ में कैसा डिजाइन किया? पहले में पहले हम ये बात लेते हैं, मिथ्या तो प्रकृति सर्वघाती है, उसके स्पर्धक सभी सर्वघाती ही हैं। यही बात अनंतानुबंधी में और प्रत्याख्यान में,
प्रत्याख्यान
सम्यक मिथ्यात्व में भी वो सारे सर्वघाती ही है। अब देशघाती प्रकृतियां कौन कौन सी है?
संज्वलन
है, नव नौकशा है और सम्यक प्रकृति है, वो देशघाती है।
तो पांचवे गुण स्थान जो प्रत्याख्यानावरण का उदय है वो देशघाती रूप है, सर्वघाती रूप से
सर्वघाती द्विस्थानीय, अभी तो उसकी चर्चा हुई ना अपने, निकालो निकालो। अभी हमने जो 130 पृष्ठ पर चर्चा उसी की तो चली थी। एक सौ तीस पृष्ठ पर 354 नंबर का पॉइंट, नीचे से दूसरी लाइन, इनकी यानी प्रत्याख्यानावरण की सर्वघाती स्वरूप जघन्य अनुभाग उदीर्णा किस रूप से है अश्विन भाई? जघन्य अनुभाग उदीर्णा किस रूप से है?
सर्वघाती रूप से।
और वो द्विस्थानीय होती है, हमने 43 पेज पर देख लिया। अब यहाँ संज्वलन की जो है, संज्वलन प्रकृति ओरिजिनली देशघाती है, उसमें सर्वघाती स्पर्धक है तो उदय दोनों का रहता है, जहाँ कहीं भी जो उसका। अभी विशुद्धि के काल में
देशघाती रूप,
देशघाती, हाँ दोनों का उदय हो सकता है। तो यहाँ लिखते अभी अप्रत्याख्यानावरण की जघन्य में भी जघन्य हो अनुभाग उदीर्णा, वो भी सर्वघाती ही हो, सर्वघाती प्रकृति है, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती ही है, तो उसका जघन्य भी सर्वघाती पने भले द्विस्थानीय हो वो सर्वघाती होगा। इसलिए इसके अनंत गुणे अनुभाग उदीर्णा की उपलब्धि होती है। पच्चखानावरण जघन्य अनुभाग उदीर्णा अन्नधरा अनंत गुणा, उससे प्रत्याख्यानावरण कर्मों की अन्यतर जघन्य अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणी है। देखो स्वामित्व सबके लिए वही है, नारकी में क्यों बदलेगा?
ये चौथे गुणस्थान
है, ओ की नहीं बात, नारकी की बात करें। नारकी में दोनों का स्वामित्व एक ही है, सबका, छह नौकशाओं का वहीं पर होगा, नपुंसक वेद का वहीं पर होगा, संज्वलन प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सभी का वहीं पर होगा, अनंतानुबंधी तो मिथ्या दृष्टि के होंगे, बाकी का स्वामित्व पने की अपेक्षा कोई भेद नहीं, प्रकृति की अपेक्षा भेद होंगे। तो पहले अप्रत्याख्यान को लिया, अब कहते प्रत्याख्यानवरण कर्मों की अन्यथा जगन अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी, क्योंकि यहाँ लिखा है देखो, इन दोनों के स्वामित्व में भेद नहीं होने पर भी, कौन सा स्वामित्व है इसका मंदाबेन? इन दोनों का स्वामी कौन है, किसके ये होता है जगन्य अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान? हाँ चौथे से ये नारकी है, सर्व विशुद्ध चौथे गुणस्थान वाला। तो इन दोनों के स्वामित्व में भेद नहीं होने पर भी ये क्रम से, यानी इनका स्वरूप क्या है ओरिजिनली वो बता रहे, यहाँ देश संयम होता नहीं है, परंतु ये कर्मों की स्वरूप क्या है, तो देश संयम और सकल संयम का प्रतिबंध करते हैं, इसलिए प्रकृति विशेष है इसमें, इसलिए इनके उक्त प्रकार से अल्पभूतों की सिद्धि निप्रतिबंध रूप से पाई जाती है। अप्रत्याख्यानावरण के जघन्य से प्रत्याख्यानावरण का जघन्य अनंत गुणा वाला है। सम्मामिच्छत्त से जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है। देखो और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की जघन्य किसके होगी? अभी अभी आपने बताया
चौथे गुणस्थान वाला,
चौथे गुणस्थान वाला सर्व विशुद्ध, और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य किसके होगा? तीसरे से चौथे में जाने वाले, तो उसकी विशुद्धि कम है ना यहाँ पर, क्योंकि सर्वघाती द्विस्थानीय पने की अपेक्षा विशेषता न होने पर भी संज्वलन में तो देशघाती द्विस्थानीय देखा था, सर्वघाती द्विस्थानीय किसके किस में देखा अभी हमने?
प्रत्याख्यानावरण पर
सोचने दो, और प्रत्याख्यानावरण दोनों में सर्वघाती द्विस्थानीय था। तो सर्वघाती द्विस्थानीय ये भी सम्यक मिथ्या तो भी कैसा, वो तो होता ही द्विस्थानीय, वो है सर्वघाती और है द्विस्थानीय, भले उत्कृष्ट हो जघन्य हो, उसमें त्रिस्थानीय भी नहीं पाया जाएगा, तो कहते प्रत्याख्यान आवरण का जगन्य भी सर्वघाती द्विस्थानीय था और सम्यक मिथ्यात्व का भी सर्वघाती द्विस्थानीय है, फिर भी सम्यक दृष्टि की विशुद्धि से सम्यक मिथ्या दृष्टि की विशुद्धि के अनंत गुणे हीन पने का, विशुद्धि अनंत गुणा हीन है, अनुभाग अनंत गुणा अधिक होगा, उल्टा है ना प्रपोर्शन। तो सम्यक दृष्टि की विशुद्धि के विशुद्धि से सम्यक मिथ्या दृष्टि की विशुद्धि के अनंत गुणे हीन पने का अवलंबन लेकर प्रत्याख्यानावरण की अन्यतर प्रकृति की जगन्य अनुभाग उदीर्णा से सम्यक मिथ्यात्व की जगन्य अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणी उपलब्ध होती है। मंजू बहन ख्याल में आई बात ये? प्रत्याख्यानावरण से हम सम्यक मिथ्यात्व की कंपेयर करें, प्रत्याख्यानावरण भी सर्वघाती है और सम्यक मिथ्यात्व भी सर्वघाती है। प्रत्याख्यानावरण का जगन्य नारकी में कहाँ देखा था? चौथे गुणस्थान वाले जब ज्यादा विशुद्ध है तभी। सम्यक मिथ्यात्व का जगन्य कब होगा? तीसरे से चौथे में जाने वाला जी। तो दोनों में विशुद्धि कहाँ ज्यादा है, चौथे वाले के तीसरे वाले? चौथे वाले। तो जहाँ विशुद्धि ज्यादा है वहाँ अनुभाग कम है, इसलिए उसके जगन्य अनुभाग से सम्यक मिथ्यात्व का जगन्य अनुभाग अनंत गुणा ज्यादा बताया। ख्याल में आई बात ये? अब ये तो तीसरे गुणस्थान की बात है। अब जिनका पहले में जगन्य होता है ऐसे प्रकृतियां भी बाकी हैं, चौथे में जिनका जगन्य होता है वो सब हम देख लिए हमने। उसमें सबसे पहला नंबर किसका देखा था? सम्यक प्रकृति का, क्योंकि उसमें तो कृतकृत्य वेदक भी लेते हैं। तो सम्यक प्रकृति के बाद हमने नौ कषाय लेके, फिर नपुंसक वेद लिया, संगोलन लिया, प्रत्याख्यान लिया, प्रत्याख्यान लिया, उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व। अब पहले गुणस्थान में जाएंगे, अनंतानुबंधी हम जहन अनुभाग उदीर्ण अन्नदरा अनंत गुणा, उससे अनंतानुबंधियों की अन्यतर जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि की विशुद्धि से अनंत गुणी हीन मिथ्या दृष्टि की विशुद्धि द्वारा इसका जघन्य स्वामित्व उपलब्ध होता है। मिथ्यत्वस्य जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणा, उससे मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणी है, यह सूत्र सुगम है। एक तो प्रकृति की अपेक्षा भेद तो था ही था, और मिथ्यात्व का नारकी के लिए कब होता है जघन्य? प्रथमोक्षम, जब प्रथम स्थिति की समय और अवली बाकी है, और अनंत अनुबंधी का अंतिम समय में होता है, क्योंकि उसमें अंतर नहीं होता। यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार नरक गति की अपेक्षा ओघ अल्पबोधव समाप्त हुआ। नरक गति की अपेक्षा ओघ क्यों कहा? हाँ, यानी सातों पृथ्वियों का जनरल कथन किया, इसलिए ओघ अल्पबोधव। अब कहते इसी प्रकार पहली पृथ्वी में, यानी अभी नरक की नरक में फिर और उसके भेद करेंगे, यानी जिसको कहेंगे ना गति मार्गणा की अपेक्षा अवांतर भेद चलेंगे। पहले सभी सातों ही नरकों में मिलकर कथन किया, इसलिए नरक गति की अपेक्षा फिर ओग कहा उसको। नरक में सामान्य नारकी की अपेक्षा अब उसमें पहली पृथ्वी में ऐसा ही जानना चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्व का जघन्य तो पहली पृथ्वी में पाया जाएगा। दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक इसी प्रकार अल्पभूत हैं, क्यों वहां भी विशेषता क्यों नहीं है?
वहां पे भी ऐसे भी,
क्योंकि ऐसे भी उसकी कम होती है,
एक स्थानीय है
उसका जो जघन्य होगा होगा, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है।
सोलह नंबर दिया था या चौदह नंबर दिया है?
सम्यक दो का जघन्य नारकी में कितना होगा? एक स्थानीय के द्विस्थानीय? क्यों
सम्यक दो का वो तो चौथे गुणस्थान में होगा ना?
चौथे गुणस्थान में होगा, तो एक स्थानीय हो सकता है कि नहीं हो सकता?
नहीं होगा ना।
हाँ,
कृतकृत्य वेद की है ना।
एक मिनट मैं ये देख नहीं रही, सम्यक प्रकृति की
सातवें नरक में भीतर है।
नहीं अभी हमने कहाँ देखा था,
पेज नंबर 40 पे। नहीं वो तो चार संबोधन की अपेक्षा हमने बात की।
हाँ सम्यक तो की जगन्य और अजगन्य अनुभाग उदीर्णा द्वि स्थानीय ही है। 44 पे तीसरी लाइन सम्यक तो की जगन्य भी द्विस्थानी है। अच्छा पहला का थोड़ा निकाल के देखते हैं ना तो क्लैरिटी और हो जाए। यहीं रुकेंगे हम। हाँ 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 कितना है आगे, क्या कहते हैं? हाँ 370 पूरा करते हैं। हाँ तिरियंचों में और पंचेंद्रिय तिरियंच त्रिक में यही जघन्य अल्प बहुत्व आलाप करना चाहिए, इतनी विशेषता है, अपनी अपनी उदीर्णा प्रकृतियां जाननी चाहिए। अन्य विशेषता यह है कि अप्रत्याख्यान से अभी यहाँ क्या संयता संयत गुण स्थान हो सकता है। अप्रत्याख्यान से पहले संयता संयत गुण स्थान में प्राप्त होने वाली विशुद्धि की प्रधानतावश प्रत्याख्यान की जघन्य अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीन होकर निपतित होती है। पंचेंद्रिय तीनेंद्र अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में नारके उनके समान भंग है, इतनी विशेषता है। इनमें सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व तो प्रकृतियों की उदीर्णा नहीं है, वो तो मात्र मिथ्यात्व तो गुणस्थान है ना। यहाँ पर मनुष्य त्रिक में ओक के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि वेद विशेष जान लेने चाहिए कि जहाँ जो वेद है यानी मनुष्य पर्याप्त में नपुंसक वेद पुरुष वेद है, मनुष्य नहीं में स्त्री वेद। अब देवगति में भी यही नारक वगैरह वगैरह कल हम देखेंगे। जावानी के ज्ञान